भूषण सार में सुवर्थ निर्णय प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है। इसकी पहली जो कारिका है प्रकरण की 24वीं कारिका, यह 20 नंबर में भी परीक्षा में आता है और इसकी व्याख्या पूछी जा सकती है। चलिए पढ़ते हैं। आश्रयो बधिरुद्देश्यः संबंधः शक्तिरेव वा यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपांकर्मेति भाष्यतः। संक्षिप्त अर्थ इसका ये होगा कि यथायथम विभक्ति अर्थाः, यथायथम माने यथा योग्यम, माने जो जिसके योग्य है उस तरह का विभक्ति का अर्थ जो है यहाँ पर मानना चाहिए। कहाँ पर? तो यहाँ चार अर्थ बताए गए ऊपर में, आश्रयः, अवधिः, उद्देश्यः, संबंधः। तो ये जो चार अर्थ हैं, यही चारों अर्थ विभक्ति के होते हैं। विभक्ति से यहाँ पर सुप विभक्ति लेना है। सुप विभक्ति माने सुओजस से लेकर के प्रथमा से लेकर के नियो सुप सप्तमी तक जो विभक्तियाँ हैं, उन विभक्तियों के यही चार में से कोई न कोई अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है आश्रय, दूसरा है अवधि, तीसरा है उद्देश्य, चौथा है संबंध। तो इन चारों में से यथायथम विभक्त्यर्थाः बोध्याः, यथायोग्य जो है विभक्तियों के अर्थ समझने चाहिए। इसमें भाष्य का भी प्रमाण बताते हैं कि सुपांग कर्मेति भाष्यतः, ये सुपांग कर्म के भाष्य में ये बात बताई गई है कि ये सब विभक्ति के अर्थ हैं। इसमें एक शब्द जो मैंने जानबूझ के नहीं कहा वो है शक्तिरेव वा, शक्ति ही एव वा, अथवा बा माने अथवा, शक्ति ही एव अर्थः, अर्थात सभी विभक्तियों का एक जो है ना शक्ति अर्थ ही होता है, बाकी अलग अलग अर्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कर्ता है तो कर्तृत्व शक्ति, कर्म है तो कर्मत्व शक्ति, करण है तो करणत्व शक्ति। तो इस तरह से शक्ति अर्थ मानने से भी जो है काम चल जाता है, अथवा अलग अलग अर्थ माने तो आश्रय, अवधि, उद्देश्य, संबंध, इस तरह से अर्थ मानना होगा। तो इस कारिका में सभी अर्थों का जो है वर्णन किया जाना है व्याख्या में। तो सबसे पहले अब आश्रय अर्थ की शुरुआत होती है। जो मैंने संक्षिप्त में अर्थ कहा उसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आश्रय, अवधि, उद्देश्य और संबंध, इन चारों में से कोई न कोई अर्थ जो है विभक्तियों का होता है। शक्ति ही एव, अथवा सभी विभक्तियों का अर्थ जो है शक्ति ही होता है। इसका उदाहरण भी बताया, कर्ता में कर्तृत्व शक्ति, संप्रदान में संप्रदानत्व शक्ति, अधिकरण में अधिकरणत्व शक्ति। तो एक शक्ति को ही अर्थ मानने से भी काम चलता है, और ये बातें सुपांकर्म सूत्र के भाष्य में बताई गई हैं। अब किसका, किस विभक्ति का कौन सा अर्थ है, इसके लिए कौन भट्ट आगे कहते हैं कि द्वितीया तृतीया सप्तमी नाम आश्रय अर्थ। आसान है कि तीन तरह की विभक्तियों का अर्थ आश्रय है, द्वितीया का, तृतीया का और सप्तमी का। तथा ही अब इसमें प्रमाण बताते हैं कि कर्मन द्वितीया से जो है द्वितीया विभक्ति होती है। किस अर्थ में? कर्म अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है। अच्छा, कर्म क्या होता है? तो तच्च कर्तुः ईप्सिततमम्, कर्ता का जो ईप्सिततम होता है वही कर्म कहलाता है। अच्छा, अब वह कर्ता का ईप्सिततम कौन होता है? तो क्रियाजन्य फलाश्रय इत्यर्थ, क्रिया से जो जन्य फल है, माने क्रिया से उत्पन्न जो फल है, उस फल का जो आश्रय होता है वही कर्म होता है, और उसी कर्म में कर्मन द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। क्रियाजन्य फलवत्वेन कर्मणः एव कर्तुर कर्तुरीप्सिततमत्वात्, क्रिया से जन्य फल से युक्त होने के कारण क्रियाजन्य फलवत्वेन, क्रिया से उत्पन्न फल से युक्त वत्वेन माने युक्त होने के कारण, कर्मणः एव माने कर्म में ही जो है कर्तुः ईप्सिततमत्व रहता है, माने कर्ता का ईप्सिततम कर्म ही होता है। तो कर्मन द्वितीया से जो हम द्वितीया विभक्ति करते हैं उसका अर्थ कर्म हुआ, और कर्म किसको कहते हैं, तो कर्तुः ईप्सिततमम्। कर्ता का जो ईप्सिततम है वह कर्म है। वह कौन होता है ईप्सिततम, तो क्रियाजन्य फल का आश्रय जो हो वही कर्ता का ईप्सिततम होता है, वही कर्म होता है। आप जानते भी हैं, पहले पढ़े हैं कि फलाश्रय कर्म होता है और व्यापाराश्रय कर्ता होता है। आगे कहते हैं कि तथा युक्तं चानिप्सितम् इत्यादि संग्रहा च एवं एव उक्तम्। ताकि कर्म संज्ञा जो है वह ईप्सितम् को भी होती है, कतुरीप्सितम् कर्म से, और अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है, उसके लिए सूत्र है तथा युक्तं चानिप्सितम्। तो अगर हम कहते हैं कि फलाश्रय मतलब कर्म होता है, तो इससे दोनों तरह का कर्म प्रकरण में आ जाएगा। तथा युक्तं चाप निप्सितम से होने वाला भी कर्म आएगा पकर में, क्योंकि वह भी फल का आश्रय है, और कतुरीप्सितम वाला कर्म भी पकर में आएगा क्योंकि वह भी फल का आश्रय है। इसीलिए यहाँ पर आश्रय अर्थ को बताया गया। ईप्सित अनिप्सित तत्वयोः शाब्द बोधे भाना भावेन, और कहा कि जब हम द्वितीय विभक्त्यंत शब्द का शाब्द बोध करते हैं तो उस समय में कर्म अर्थ का ही भान होता है, कर्म अर्थ का ही बोध होता है। उस समय में ईप्सित कर्म और अनिप्सित कर्म ऐसा भान नहीं होता, ऐसा बोध नहीं होता। इसलिए न तो वाच्य कोटो तत्प्रवेश, वाच्य की कोटि में माने शाब्द बोध जब करते हैं तो अर्थ की कोटि में ईप्सितत्व और अनिप्सितत्व का प्रवेश नहीं होता है, केवल जो है कर्म का ही प्रवेश होता है, कर्म का ही शाब्द बोध होता है। तथा च, अब क्या हुआ कुल मिलाकर के, कि क्रिया जन्य फल का जो आश्रय है वह कर्म है। अब इसमें तीन चीजें हैं, एक है क्रिया, एक है फल, एक है आश्रय। क्रिया जन्य फल आश्रय यह कर्म, तो क्रिया और फल जो है यह तो धातु का अर्थ है, धातु से ही इसका लाभ हो जाता है, तो अनन्य लभ्य जो है वह अर्थ माना जाता है ना, तो ये तो अन्य लभ्य है। कौन? क्रिया और फल जो है ये दोनों अन्य लभ्य है, माने धातु लभ्य है। कौन ऐसा है जो हम अन्य लभ्य नहीं है? वह तो आश्रय है। इसीलिए आश्रय ही जो है अनन्य लभ्य होने के कारण द्वितीया का अर्थ माना जाता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर निरूपित किया। आगे कहते हैं कि तत्वं च अखंड शक्ति रूपम अवच्छेदकम। तत्वं च में तत्पद जो है उससे आश्रय को पकड़ लीजिए, तो तत्वम का अर्थ होगा आश्रयत्वम। तो आश्रयत्व जो है वह अखंड शक्ति रूप होता है, उसमें कोई जो है ना शक्ति का खंड नहीं होता, और वही जो है आश्रयत्व ही जो है आश्रय का अवच्छेदक धर्म होता है। ओदनम पचति इत्यत्र विक्लित्ति आश्रयत्वात् कर्मता। ओदनम पचति में पच धात का अर्थ जो है विक्लित्ति अनुकूल व्यापार, उसमें क्रियाजन्य फल कौन है? विक्लित्ति है। उस विक्लित्ति का आश्रय कौन है? ओदन है। तो विक्लित्ति का आश्रय होने के कारण ओदनम पचति में ओदन में कर्मता होती है, माने ओदन में कर्म, ओदन की कर्म संज्ञा होती है। घतम करोति इत्यत्र उत्पत्ति आश्रयत्वात्। ऐसा है ना कि इन्होंने सामान्य रूप से कहा कि आश्रय अर्थ होता है द्वितीया का, लेकिन वह आश्रय जो है कहीं विक्लित्य आश्रय होगा, कहीं उत्पत्ति आश्रय होगा, कहीं पर और भी होगा। अर्थात वो आश्रय का मतलब फलाश्रय लेना है, और फल जो है अलग अलग धातु में अलग अलग प्रकार का होता है। वही बता रहे हैं कि ओदनम पचति में विक्लित्ति का आश्रय है ओदन कर्म, घटम करोति में उत्पत्ति रूप फल का आश्रय है घट, इसीलिए घट की कर्म संज्ञा हो जाती है। उत्पत्ति है धातुअर्थत्वात्, यहाँ घटम करोति में जो क्री धातु है उसका फल उत्पत्ति रूप में माना जाता है, इसीलिए फलाश्रय अर्थात उत्पत्त्याश्रय घट के होने से कर्म संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही घटम जानाति में, जानाति में जो ज्ञा धातु है उसका अर्थ उसमें आवरण भंग रूप फल होता है। आवरण कहते हैं कि जिस से किसी से हम ढक देते हैं किसी को, पर्दा कह लीजिए, वह होता है आवरण। उसका भंग होना माने उसका ध्वंस होना, उसका नाश होना। तो ज्ञा धातु जो है, ज्ञान जब होता है ना तो किसका नाश हो जाता है? अज्ञान का नाश हो जाता है। तो अज्ञान रूपी जो आवरण है ज्ञान का, उसका भंग होना यही फल होता है जानाति माने ज्ञा धातु में। इसीलिए घटम जानाति में आवरण भंग रूप जो फल का आश्रय है घट, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अतीत अनागत आदि परोक्ष स्थले भी, ताकि जो अतीत है अर्थात भूतकाल वाला है और अनागत है अर्थात भविष्यत काल वाला है, तो भूत वाला भी परोक्ष होता है और भविष्यत वाला भी परोक्ष होता है, तो इन दोनों तरीके के परोक्ष में माने अतीत परोक्ष और अनागत परोक्ष में ज्ञान जन्यस्य तस्य आवश्यकत्वात्, ज्ञान से जन्य जो है क्या आवरण भंग रूप फल वह आवश्यकत्वात् माने वह अवश्य रूप से होना चाहिए, अन्यथा यथा पूर्वम न जानामि इति आपत्ते है, नहीं तो क्या होगा कि ये प्रयोग होगा कि यथा पूर्वम न जानामि माने जैसा पहले था वैसा मैं नहीं जानता हूँ, इस तरह से लोग व्यवहार करेंगे, जबकि ऐसा व्यवहार होता नहीं है। आवरण भंग रूप जो फल है वह पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, इस तरह से यथा पूर्वम जानामि यह प्रयोग नहीं होता है। अतीतादे हे आश्रयतया च विषयतया ज्ञान आश्रयताया नैयायिका नाम इव सदकार्यवाद सिद्धांतात् वा उपपद्यते, कहा जो अतीत कालिक और अनागत कालिक माने भविष्यत कालिक जो ये जो फल है उसका आश्रय होने के लिए विषयता संबंध से अथवा आश्रयता संबंध से जो फलाश्रय होता है वही ज्ञानाश्रय होता है, ये नैयायिक लोग मानते हैं कि विषयता संबंध से ज्ञान का जो आश्रय हो और आश्रयता संबंध से अतीतादि फल का जो आश्रय हो वह कर्म होता है, ऐसा नैयायिक का नाम है, वह नैयायिक की तरह सत्कार्यवाद सिद्धांतात् वा अथवा सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार अतीत और अनागत फल के आश्रय को भी जो है कर्म संज्ञा होती है। अब ये सत्कार्यवाद सिद्धांत क्या है, ये सत्कार्यवाद सिद्धांत है सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन का कहना है कि कोई भी कार्य नया नहीं होता, कार्य जो है पहले से कारण में विद्यमान रहता है, बस केवल उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से कोई भी जो फल है वह हमेशा रहता ही रहता है, केवल जो है वर्तमान में अगर अभिव्यक्ति होगी तो वर्तमान फल होगा, भूत में अभिव्यक्ति हुई रहेगी तो भूत फल होगा, भविष्यत में अभिव्यक्ति हुई रहेगी तो भविष्यत फल होगा। इस तरह से सत्कार्यवाद सिद्धांत को मानने पर फल का आश्रय जो है वह घटपट आदि हो जाता है और फलाश्रय होने के कारण उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। आगे तिरोभाभ्युपगमे भावानाम से नास्तिता लब्ध क्रमे तिरोभावे नश्यतीति प्रतीयते, ये जो सत्कार्यवाद सिद्धांत की बात हुई थी सांख्य की उसी के बारे में ये कारिका है, ये वाक्य पदीयम में बताया गया है कि तिरो किसी भी वस्तु की नई उत्पत्ति नहीं होती है, या तो उसका तिरोभाव होता है और प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव होने को ही लोग कहते हैं कि उत्पत्ति हुई है और तिरोभाव होने को ही जो लोग कहते हैं नाश हुआ है, यही है सांख्यवाद, ये सत्कार्यवाद सिद्धांत सांख्यों का। तो इसके आधार पर जो है कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है, तो उस फल का आश्रय हो जाने के कारण चाहे अतीत कालिक हो चाहे अनागत कालिक हो, फल के आश्रय होने के कारण उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त शंका समाधान है, कहते हैं कि ननु चैत्रो ग्रामम गच्छति, माने चैत्र ग्राम जाता है, यहाँ पर धातु कौन है, गम धातु है, इसका अर्थ क्या होता है, संजोगानुकूल व्यापार, माने संजोगानुकूल व्यापार माने संजोग के अनुकूल, अनुकूल अर्थात जनक, माने संजोग जनक व्यापार। अब यहाँ पर जो है ना फल कौन है, इसमें गम धातु में संजोग है फल, अब संजोग जो है वह संजोग संबंध जो है दो लोगों के बीच होगा, एक तो क्षेत्र के बीच होगा और ग्राम के बीच होगा, माने संजोग ग्राम में भी रहेगा और क्षेत्र में भी रहेगा। तो जैसे संजोग फलाश्रय ग्राम हुआ उसी तरह से संजोग फलाश्रय क्षेत्र भी हुआ, तो जैसे ग्रामों में कर्म संज्ञा होती है वैसे क्षेत्र में भी कर्म संज्ञा होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है, यही सवाल आगे बताते हैं कि ननु चैत्रो ग्रामम गच्छति इत्यत्र, इस वाक्य में ग्रामस्य इव माने ग्राम की ही तरह क्षेत्रस्य अपि क्षेत्र का भी क्रियाजन्य ग्राम संयोग रूप फलाश्रयत्वात्, क्रिया से उत्पन्न जो ग्राम का संयोग है इस फल का आश्रय होने के कारण कर्मत्व आपत्तो कर्म कर्म संज्ञा की आपत्ति होगी। तो फिर चैत्र ग्रामम गच्छति जो कहते हैं, इसके बदले चैत्र चैत्रम गच्छति इस तरह का भी प्रयोग होने लगेगा। और फिर दूसरी शंका करते हैं कि प्रयागतः काशी गच्छति, माने प्रयाग से कोई व्यक्ति काशी जा रहा है, यहाँ पर भी जो है ना गम धातु का अर्थ है संयोग, तो संयोग जो है काशी के साथ हो रहा है चैत्र का, तो इस यहाँ पर प्रयागम गच्छति इत्यापत्ति, इसमें जो है प्रयागम गच्छ प्रयागतः के बदले प्रयागम गच्छति इस तरह से प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गच्छति में जब कोई कहीं जाता है उसमें दोनों फल होता है, संयोग भी होता है और विभाग भी होता है। प्रयाग से अगर कोई काशी जाएगा तो क्या होगा, काशी के साथ तो संयोग होगा और प्रयाग के साथ उसका विभाग होगा। तो गमन क्रिया जो है, गमन क्रिया से जन्य फल दोनों है, संयोग भी है और विभाग भी है। तो जैसे संयोग आश्रय काशी की कर्म संज्ञा होती है, ऐसे ही विभाग आश्रय प्रयाग की भी जो है कर्म संज्ञा होनी चाहिए। क्रियाजन्य संयोगस्य काश्याम इव विभागस्य प्रयागे भी सत्वात्, जैसे क्रियाजन्य संयोग काशी में रहता है ऐसे क्रियाजन्य विभाग जो है प्रयाग में रहता है, तो फिर प्रयागम गच्छति ये प्रयोग होने लगेगा, प्रयागात गच्छति के बदले। ऐसा क्यों नहीं होता? ये जब दो प्रश्न पूछे गए, एक तो पूछा गया कि चैत्र गच्छति के बदले चैत्रम गच्छति होने लगेगा, और दूसरा कहा कि प्रयागात गच्छति के बदले प्रयागम गच्छति होने लगेगा, क्योंकि आप फलाश्रय को कर्म मानते हैं ना, तो फलाश्रय ये दोनों हैं, काशी भी है प्रयाग भी है, तो काशिम गच्छति की तरह प्रयागम गच्छति होना चाहिए, और ऐसे ही फलाश्रय ग्राम भी है और क्षेत्र भी है, तो ग्रामम गच्छति की तरह क्षेत्रम गच्छति प्रयोग होना चाहिए। तो कहते हैं कि इति चेन्न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तो कहा कि ग्रामस्य इव क्षेत्रस्यापि फलाश्रयत्वेपि, कहा कि ये बात सही है कि ग्राम की तरह क्षेत्र भी फल का आश्रय है, माने संयोग रूपी फल का आश्रय दोनों है। फिर भी क्या होगा यहाँ पर ना, कि चैत्र में दो संज्ञाओं की प्राप्ति होगी, कर्तृ संज्ञा की भी प्राप्ति होगी स्वतंत्रकर्ता से, और कर्म संज्ञा की भी प्राप्ति होगी कतुदीप्सित तमम कर्म से, और दोनों की प्राप्ति होने पर जो पर संज्ञा होती है विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो पर संज्ञा जो कर्तृ संज्ञा है उससे कर्म संज्ञा का बाद हो जाएगा, इसीलिए चैत्रम गच्छति प्रयोग नहीं होगा, चैत्र गच्छति ही प्रयोग होगा। वही कहा कि फलाश्रयत्वेपि तदीय कर्तृ संज्ञया कर्म संज्ञाया बादेन, कर्तृ संज्ञा के द्वारा कर्म संज्ञा का बाद हो जाने से चैत्रश्चैत्रम इति प्रयोग असंभवात, ऐसा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि द्वितीया की उत्पत्ति होने के लिए संज्ञा ही नियामक होता है, माने जहाँ कर्म संज्ञा होगी वहाँ द्वितीया होगी, ऐसा नहीं है कि जो फलाश्रय होगा वहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। फल कर्म संज्ञा होने के लिए द्वितीया होने के लिए संज्ञा का होना जरूरी है, फलाश्रयत्व का होना जरूरी नहीं है। ताकि अगर ये बात नहीं स्वीकार करेंगे कि द्वितीया के लिए संज्ञा का होना जरूरी है, तो अन्यथा गम्यति कृष्णम गोकुलम इत्यत्र इव, जैसे गम्यति कृष्णम गोकुलम में कृष्णम और गोकुलम दोनों में, ये कृष्ण में जो है कर्म संज्ञा होती है, उसी तरह से पाचयति कृष्णेन इत्यत्रापि कृष्ण पदा द्वितीया पड़ते है, ऐसे पाचित कृष्णेन में भी कृष्ण सबसे द्वितीया आने लगेगी। इस तरह से एक प्रश्न का यहाँ पर समाधान किया गया, चैत्रश्चैत्रम गच्छति इस शंका का। अब आगे का पाठ जो है आगे के पाठ में पढ़ेंगे।